एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी मेजबान एक।
और मैं हूं आपका मेजबान दो।
आज हमारे एक लिसनर ने हमें बहुत ही दिलचस्प किताब भेजी है, रिची रॉबर्टसन की गाथा, अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन। और उनका सवाल मतलब बहुत सीधा और जरूरी है। योहान वोल्फगैंग वॉन गेटे, ये नाम सुनने में ही इतना भारी भरकम लगता है।
बिल्कुल जैसे किसी म्यूजियम में रखी कोई मूर्ति हो।
हाँ, तो क्या 200 साल पहले का ये जर्मन लेखक आज की इस भागदौड़ भरी सुपर स्पेशलाइज्ड जिंदगी में हमारे किसी काम आ सकता है?
ये सवाल बहुत अच्छा है, क्योंकि आज हम सब या तो टेक एक्सपर्ट हैं, या मार्केटिंग गुरु, या फिर फाइनेंस विजर्ड।
हम एक चीज में बहुत गहरे जाते हैं।
बिल्कुल। और फिर आते हैं गेटे, जो कवि भी थे, नॉवलिस्ट भी, नाटककार भी, वैज्ञानिक भी, और तो और एक पूरे राज्य के मंत्री भी।
तो आज की हमारी ये पड़ताल इसी पहेली को सुलझाने की है।
हाँ, कि क्या गेटे सिर्फ इतिहास का एक अजूबा है, या फिर एक संतुलित और संपूर्ण जीवन जीने का कोई नक्शा उनके पास है।
और इस सफर में हमारे गाइड लेखक रिची रॉबर्टसन, वो कोई मतलब आम जीवनीकार नहीं है।
बिल्कुल नहीं, वो तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जर्मन साहित्य के सबसे बड़े नामों में से एक माने जाते हैं।
उनकी खासियत ये है कि वो गेटे को किसी एक खांचे में नहीं डालते।
सही कहा, रॉबर्टसन गेटे को एक व्यक्ति के तौर पर तो देखते ही हैं, पर साथ ही उस पूरे दौर के आईने में भी देखते हैं।
18वीं सदी का यूरोप।
हाँ, जब विज्ञान, राजनीति, कला, सब कुछ मतलब सब कुछ बदल रहा था। रॉबर्टसन हमें दिखाते हैं कि गेटे सिर्फ उस दौर के प्रोडक्ट नहीं थे,
बल्कि
उस दौर को शेप देने वालों में से थे।
बिल्कुल, वो गेटे की बिखरी हुई उपलब्धियों को जोड़कर एक पूरी तस्वीर बनाते हैं।
तो चलिए इस किताब के जरिए गेटे को उस ऊंचे आसन से उतारकर थोड़ा करीब से समझने की कोशिश करते हैं। अपनी जिंदगी के एक ही फलसफे में पिरो दिया था,
और उस फलसफे का एक नाम है बिल्डुंग।
ये बिल्डुंग शब्द सुनने में बड़ा भारी लगता है। क्या ये बस पर्सनल डेवलपमेंट का कोई पुराना जर्मन वर्जन है?
उससे कहीं ज्यादा है। पर्सनल डेवलपमेंट में अक्सर एक लक्ष्य होता है, जैसे प्रमोशन पाना या वजन कम करना।
एक मंजिल होती है।
हाँ, रॉबर्टसन बताते हैं कि बिल्डुंग एक अंतहीन प्रक्रिया है। इसका मतलब है खुद को एक कलाकृति की तरह तराशना,
अपने हर अनुभव से सीखना, चाहे वो अच्छा हो या बुरा,
और एक ज्यादा संपूर्ण इंसान बनना। ये कोई मंजिल नहीं है, ये सफर ही है।
अच्छा, तो ये किताब इसी सफर की कहानी है, एक ऐसे नौजवान की कहानी जो भावनाओं के तूफान में बह रहा था,
और फिर कैसे उसने उस तूफान की ऊर्जा को दुनिया को समझने और उसे बेहतर बनाने में लगा दिया।
तो गेटे मशहूर कैसे हुए? वो कौन सी चीज थी जिसने उन्हें रातों रात पूरे यूरोप का, कह सकते हैं, साहित्यिक रॉकस्टार बना दिया?
वो चीज थी 1774 में आया उनका एक छोटा सा उपन्यास, द सोरोज ऑफ यंग वर्थर।
कहानी बहुत सीधी है।
हम्म,
एक जवान बहुत संवेदनशील कलाकार है वर्थर, जो एक ऐसी लड़की से प्यार करने लगता है जिसकी शादी किसी और से तय है, और अंत में जब उसे कोई रास्ता नहीं सूझता
तो वो आत्महत्या कर लेता है।
हाँ,
और ये किताब आते ही छा गई। कहते हैं कि एक वर्थर फीवर फैल गया था।
अच्छा।
नौजवान लड़के वर्थर की तरह नीले कोट और पीली पैंट पहनकर घूमने लगे थे।
अरे, तो ये उस जमाने का वायरल ट्रेंड था।
बिल्कुल, जैसे आज कोई के-पॉप स्टार के स्टाइल को कॉपी करता है।
पर ये सिर्फ फैशन नहीं था, ये उपन्यास उस दौर के युवाओं की बेचैनी, उनके जुनून और समाज के नियमों से उनकी घुटन को आवाज दे रहा था।
ये उस स्टर्म उंड ड्रैंग यानी तूफान और तनाव आंदोलन का सबसे बड़ा प्रतीक बन गया।
हाँ, जो ठंडे तर्क के खिलाफ सच्ची बेलगाम भावनाओं को सबसे ऊपर रखता था।
ठीक है, तो गेटे एक तरह से बागी युवाओं के आइकॉन बन गए। लेकिन फिर उन्होंने कुछ ऐसा किया जो किसी की समझ में नहीं आया। अपनी शोहरत के शिखर पर 26 साल की उम्र में वो वाइमार नाम के एक बहुत ही छोटे से राज्य में मंत्री बन गए।
एक लेखक जो दिलों के तूफान के बारे में लिखता था, वो अचानक खदानों का मैनेजमेंट, सड़कों का निर्माण, ये सब देखने लगा।
ये तो बहुत ही अजीब करियर मूव है।
यही तो गेटे की कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। बाहर से देखने पर ये वाकई अजीब लगता है।
कई लोगों को लगा होगा कि वो कला से भटक गए हैं।
बिल्कुल, लेकिन रॉबर्टसन समझाते हैं कि ये भटकाव नहीं था, ये उनके बिल्डिंग का सबसे जरूरी हिस्सा था।
अच्छा, कैसे?
देखिए, वर्थर के अनियंत्रित जुनून ने उससे खत्म कर दिया था। गेटे को शायद एहसास हुआ कि अगर उन्होंने अपने अंदर के तूफान को काबू करना नहीं सीखा
तो उनका भी वही हश्र होगा।
हाँ? मतलब उन्होंने असल दुनिया की समस्याओं को सुलझाने के लिए अपने जुनून को एक दिशा दी।
बिल्कुल, वाइमर में उन्होंने अनुशासन सीखा। उन्होंने सीखा कि बड़ी बड़ी भावनाएं अच्छी हैं, लेकिन दुनिया सिर्फ भावनाओं से नहीं चलती।
आपको बजट बनाना पड़ता है, लोगों से काम करवाना पड़ता है,
प्रैक्टिकल फैसले लेने पड़ते हैं।
सही कहा। इन 10 सालों के प्रशासनिक काम ने उनके लेखन को वो गहराई और परिपक्वता दी जो शायद सिर्फ कविताएं लिखने से कभी नहीं आती।
लेकिन 10 साल बाद इस सरकारी नौकरी से भी उनका मन भर गया। किताब में लिखा है कि 1786 में वो चुपके से इटली भाग गए।
एक मंत्री का ऐसे चुपके से भाग जाना?
वो किसी चीज से भाग रहे थे या कुछ खोज रहे थे?
दोनों ही बातें थी। वो वाइमर की दरबारी जिंदगी और प्रशासनिक कामों के बोझ से भाग रहे थे।
उन्हें लग रहा था कि उनका कलाकार अंदर ही अंदर मर रहा है।
और वो खोज रहे थे एक नई प्रेरणा, एक नई दिशा, और वो उन्हें मिली इटली की क्लासिकल कला और वास्तुकला में। वहां के पुराने मंदिरों मूर्तियों को देखकर उन्हें एहसास हुआ कि सबसे सुंदर चीजों में एक तरह का संतुलन होता है,
एक सामंजस्य और एक शांति होती है।
तो उनके जीवन का तूफान और तनाव वाला दौर यहाँ खत्म हुआ
और क्लासिकल दौर शुरू हुआ।
हाँ, यहीं से वाइमार क्लासिज्म की शुरुआत हुई। उनका फोकस अब सिर्फ कच्ची भावनाओं पर नहीं बल्कि उन भावनाओं को एक सुंदर और संतुलित रूप देने पर हो गया।
इटली ने उन्हें एक तरह से पुनर्जीवित कर दिया।
अच्छा, तो हमने कवि गेटे और प्रशासक गेटे की बात की, पर उनका एक और रूप है जो लोगों को सबसे ज्यादा हैरान करता है, वैज्ञानिक गेटे।
हाँ,
ये थोड़ा अजीब है, एक कवि जो पौधों और चट्टानों पर रिसर्च कर रहा है।
और वो सिर्फ शौकिया रिसर्च नहीं थी, गेटे विज्ञान को भी उसी समग्र नजर से देखते थे जिससे वो कला को देखते थे।
उस समय न्यूटन का दबदबा था, जो दुनिया को एक बड़ी मशीन की तरह देखते थे
जिसे आप पुर्जों में खोलकर समझ सकते हैं। गेटे को ये आइडिया पसंद नहीं था। वो प्रकृति को एक जिंदा बढ़ती हुई चीज मानते थे, और इसी सोच से उनका वो आदि पौधे या अर्ब प्लांसे का आइडिया आया था, है ना?
हाँ, उनका मानना था कि पौधे के सारे हिस्से, जड़, तना, पत्ती, पंखुड़ी, सब एक ही मूल आइडिया या पैटर्न के अलग अलग रूप हैं।
मतलब एक ही मास्टर डिजाइन है जिससे पौधे का हर हिस्सा बनता है।
जैसे लेगो का एक ही बेसिक ब्लॉक है
और आप उसी से दीवार भी बनाते हैं, पहिया भी और खिड़की भी।
क्या बेहतरीन मिसाल है, यही उनका नजरिया था।
उन्होंने इंसानी जबड़े की एक हड्डी की भी खोज की थी जिससे ये साबित हुआ कि इंसानों और जानवरों की शारीरिक बनावट में एक गहरा कनेक्शन है।
ये डार्विन से बहुत पहले की बात है।
लेकिन उनका सबसे विवादित काम तो रंगों पर था।
हाँ, जिसमें उन्होंने सीधे सीधे न्यूटन को चुनौती दे दी।
एक मिनट, क्या गेटे का रंगों का सिद्धांत वैज्ञानिक रूप से सही था? क्योंकि आज तो हम स्कूल में न्यूटन का ही मॉडल पढ़ते हैं। क्या गेटे यहाँ बस एक कवि की तरह सोच रहे थे, वैज्ञानिक की तरह नहीं?
ये बहुत जरूरी सवाल है और इसका जवाब है नहीं। भौतिकी के लिहाज से गेटे गलत थे और न्यूटन सही थे।
अच्छा,
न्यूटन ने साबित किया कि सफेद रोशनी 7 रंगों का मिश्रण है। गेटे का मानना था कि रंग रोशनी और अंधेरे के मेल से पैदा होते हैं।
तो फिर उनके सिद्धांत का क्या मतलब था?
देखिये, गेटे का मकसद भौतिकी की किताब लिखना था ही नहीं, उनका मुद्दा दार्शनिक था। वो ये कह रहे थे कि विज्ञान को सिर्फ नंबरों और फॉर्मूलों तक सीमित नहीं रहना चाहिए,
उसे मानवीय अनुभव से भी जुड़ना चाहिए।
बिल्कुल, हम रंगों को कैसे महसूस करते हैं, वो हम पर साइकोलॉजिकली क्या असर डालते हैं, ये सवाल उनके लिए ज्यादा जरूरी थे।
तो कला और विज्ञान उनके लिए अलग अलग नहीं बल्कि दुनिया को समझने के दो रास्ते थे जो एक दूसरे को पूरा करते हैं।
ये सारी चीजें, उनका जुनून, उनका अनुशासन, उनकी कला, उनका विज्ञान, ये सब कहाँ आकर मिलती हैं?
ये सब आकर मिलते हैं उनके सबसे महान काम में, फाउस्ट में।
एक ऐसा नाटक जिसे लिखने में उन्हें लगभग 60 साल लगे। 60 साल उन्होंने एक ही किताब पर 60 साल काम किया। आखिर ऐसा क्या था इसमें?
इसका निचोड़ क्या है कि शैतान से सौदा करने के बाद भी फाउस्ट आखिर में बच जाता है। ये तो थोड़ा अजीब लगता है,
जैसे उसे अपने किए की सजा ही नहीं मिली।
हाँ,
यही तो इस नाटक की सबसे गहरी बात है। फाउस्ट को अंत में इसलिए नहीं बचाया जाता कि वो कोई बहुत नेक इंसान था
या उसने कोई पुण्य का काम किया था, उसने तो बहुत गलतियां की।
उसे बचाया जाता है सिर्फ एक वजह से, क्योंकि उसने कभी कोशिश करना, प्रयास करना नहीं छोड़ा।
जर्मन में इसके लिए शब्द है स्ट्रेबिन।
स्ट्रेमिन
यानी निरंतर प्रयास करते रहना।
नाटक के अंत में देवदूत यही गाते हैं, जो कोई भी निरंतर प्रयास करता है उसे हम बचा सकते हैं।
ये तो भगवत गीता के उस विचार से बहुत मिलता जुलता है
जहाँ फल की चिंता किए बिना कर्म करने पर जोर दिया गया है।
बिल्कुल,
गेटे के लिए जीवन का अर्थ किसी मंजिल तक पहुँचना नहीं था बल्कि उस मंजिल की तरफ लगातार चलते रहने में था।
हार जीत से ज्यादा जरूरी है मैदान में डटे रहना।
हाँ, फाउस्ट का जीवन इसी अथक प्रयास की कहानी है और यही गेटे के अपने जीवन का भी सार था।
तो अगर हम गेटे की इस पूरी यात्रा को देखें तो कुछ बड़े विचार बार बार सामने आते हैं, जैसे उनका वो मशहूर कथन है,
क्लासिकल स्वस्थ है, रोमांटिक बीमार है।
ये सुन के अजीब लगता है क्योंकि उन्होंने तो खुद रोमांटिक आंदोलन की शुरुआत की थी।
हाँ, लेकिन वो अपने उस शुरुआती दौर से बहुत आगे निकल चुके थे। जब उन्होंने ये कहा तो वो एक परिपक्व कलाकार थे।
उनके लिए बीमार रोमांटिक कला वो थी जो सिर्फ अपनी ही उदासी, अपनी ही पीड़ा में डूबी रहे,
जो जरूरत से ज्यादा भावुक और आत्म केंद्रित हो।
और स्वस्थ क्लासिकल कला वो थी जो संतुलित हो, दुनिया से जुड़ी हो और जीवन को एक ज्यादा बड़ी सकारात्मक दृष्टि से देखे।
एक तरह से वो अपने ही युवा रूप की आलोचना कर रहे थे।
और फाउस्ट की वो दूसरी मशहूर लाइन, हाय मेरी छाती में दो आत्माएं बसती हैं।
उफ़, बिल्कुल, ये उस आंतरिक संघर्ष की बात करती है जो हम सब महसूस करते हैं।
एक आत्मा है जो हमें दुनिया की तरफ खींचती है, पैसा, सुख, महत्वाकांक्षा,
और दूसरी आत्मा है जो हमें ऊंची चीजों की तरफ खींचती है, ज्ञान, आध्यात्मिकता, कला।
गेटे का पूरा जीवन इन दो आत्माओं में एक सामंजस्य, एक संतुलन बनाने की कोशिश थी।
वो ये नहीं कहते कि एक को दबाकर दूसरे को चुनो, बल्कि दोनों को एक साथ लेकर चलो।
ठीक है, तो ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आज का हमारा लिसनर इसे अपनी जिंदगी में कैसे उतारें? हम सब तो वाइमार जाकर मंत्री नहीं बन सकते, ना ही 60 साल लगाकर कोई महाकाव्य लिख सकते हैं।
बहुत सही सवाल है। सबसे पहली और प्रैक्टिकल चीज है बिल्डों के आइडिया को अपनाना।
मतलब?
अपनी स्पेशलाइजेशन के बुलबुले से बाहर निकलना।
हाँ, अगर आप इंजीनियर हैं तो थोड़ी कविता पढ़िए, अगर आप साहित्य के छात्र हैं तो विज्ञान की कोई नई खोज के बारे में जानिए,
कोई नई भाषा सीखिए, कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट उठाइए, अपने दिमाग को कई अलग अलग दिशाओं में दौड़ाइए। इससे सोच में गहराई और लचीलापन आता है।
दूसरा, अपने काम और निजी जीवन को अलग अलग मत देखिए।
गेटे ने खदानों का प्रबंधन करते हुए भूविज्ञान सीखा।
हम भी अपने रोजमर्रा के काम में सीखने और खुद को बेहतर बनाने के मौके ढूंढ सकते हैं, है ना?
बिल्कुल। अपने काम को सिर्फ पैसा कमाने का जरिया ना समझकर उसे व्यक्तिगत विकास का एक अवसर समझें।
और तीसरा और सबसे जरूरी,
यानी प्रयास करने के विचार को अपनाएं। हम नतीजों पर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, परीक्षा में कितने नंबर आए, प्रमोशन मिला या नहीं।
गेटे हमें याद दिलाते हैं कि सार्थकता नतीजे में नहीं, प्रक्रिया में है,
उस कोशिश में है जो आपने पूरी लगन से की। चाहे आप कोई नया हुनर सीख रहे हों या
किसी रिश्ते को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हों,
बस प्रयास करते रहिए, आनंद उसी प्रक्रिया में है।
मेरे लिए इस पूरी चर्चा से सबसे बड़ी सीख ये है कि गेटे का जीवन खुद में एक कलाकृति था। उन्होंने ये नहीं सिखाया कि एक महान कवि या वैज्ञानिक कैसे बने, बल्कि ये सिखाया कि एक संपूर्ण इंसान कैसे बने।
एक ऐसा इंसान जिसकी जिंदगी में कला, विज्ञान और सामाजिक जिम्मेदारियां अलग अलग डिब्बे ना हों,
बल्कि एक ही सुंदर डिजाइन का हिस्सा हों।
और मेरे लिए सबसे जरूरी बात यह है कि गेटे हमें अपनी क्षमताओं को कभी सीमित न मानने के लिए प्रेरित करते हैं।
उन्होंने दिखाया कि उम्र के हर पड़ाव पर सीखना, बनाना और दुनिया में योगदान देना मुमकिन है।
वो कोई दूर के देवता नहीं है, बल्कि एक ऐसे इंसान हैं जिनका जीवन हमें खुद का एक बेहतर, ज्यादा संतुलित और ज्यादा दिलचस्प संस्करण बनने के लिए एक प्रैक्टिकल रोड मैप देता है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।